नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं।
जी नमस्कार।
ये विषय है पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक गहना कर्मणोगति से।
हाँ बिल्कुल।
और उसमें भी एक खास अध्याय चित्रगुप्त का परिचय। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पुरानी सी लगने वाली अवधारणा को मतलब इसके गहरे अर्थ को समझें
और ये भी देखें कि आज के समय में ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है ना।
हाँ बिल्कुल। तो शुरू करें पारंपरिक सोच से, मतलब चित्रगुप्त के बारे में हम क्या सुनते आए हैं।
जी तो देखिए, पारंपरिक रूप से जैसे गरुड़ पुराण वगैरह में बताया गया है, चित्रगुप्त यमलोक के एक देवता है।
हाँ सुना है।
उनका काम है कि हर जीव मतलब हर प्राणी अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका पूरा लेखा जोखा रखना।
एक तरह का खाता भाई।
हाँ बिल्कुल। और कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी गति क्या होगी वो इसी बही खाते के आधार पर तय होता है।
ये सुनने में तो बहुत मतलब एक व्यवस्था लगती है, लेकिन फिर मन में सवाल उठता है, और आजकल के जमाने में तो और भी ज्यादा।
हाँ कि ये कैसे संभव है।
वही कि भाई धरती पर अरबों खरबों जीव हैं, हर पल न जाने कितने कर्म हो रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई एक शक्ति, चाहे वो दिव्य ही क्यों ना हो, इस सब का हिसाब रखे हर एक का।
सही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक रूपक?
हाँ, या कोई कल्पना?
यहीं पर पूज्य गुरुदेव की बात आती है ना, वो इसे कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, यहीं पर पूज्य गुरुदेव इस पारंपरिक बात को एक बिल्कुल नया मोड़ देते हैं। वो इसे पौराणिक अलंकार की तरह देखते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान के संदर्भ में करते हैं।
अच्छा, मनोविज्ञान कैसे?
वो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत का जिक्र करते हैं, अंतःचेतना, जिसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं।
हाँ हाँ सुना है, सबकॉन्शियस माइंड। फ्रॉयड ने ये बताया था कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, चाहे हमें वो बाद में याद रहें या न रहें, वो सब हमारे अचेतन मन पर दर्ज होता जाता है, एक अमिट छाप की तरह।
ओह, तो मतलब ये हिसाब किताब कहीं बाहर यमलोक में नहीं, बल्कि हमारे हमारे अपने अंदर ही चल रहा है।
जी हाँ बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि चित्रगुप्त शब्द को ही देखिए ना, चित्र और गुप्त।
हाँ, गुप्त चित्र, हिडन पिक्चर।
बिल्कुल। तो ये वही गुप्त कैमरा या रिकॉर्डर है जो हम सबके अंदर है, हर प्राणी के अंदर, और ये लगातार हमारे कर्मों को, हमारे भावों को रिकॉर्ड कर रहा है।
हर प्राणी का अपना चित्रगुप्त।
हाँ, जैसे वो उदाहरण देते ना घटाकाश और मठाकाश का, घड़े के अंदर का आकाश या मठ के अंदर का आकाश दिखने में अलग है पर है तो महाकाश का ही हिस्सा, वैसे ही ये आंतरिक चित्रगुप्त काम करता है।
ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, मतलब देवता बाहर नहीं अंदर है। और फिर वो कर्म रेखा वाली बात भी है जो हमारे यहाँ पहले से कही जाती है।
जी, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमारे ऋषि मुनि इस आंतरिक रिकॉर्डिंग के बारे में जानते थे, और मजे की बात यह है कि आज का विज्ञान भी कुछ कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है।
विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान।
हाँ, डॉक्टर वीबेंस जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क का जो ग्रे मैटर होता है, सोचने समझने वाला हिस्सा, उसमें कुछ बारीक रेखाएं देखी।
अच्छा,
रेखाएं। और खास बात ये थी कि जो लोग ज्यादा कर्मठ थे, मेहनती थे, विचारशील थे, उनमें ये रेखाएं ज्यादा गहरी और स्पष्ट थीं, और जो आलसी थे या ज्यादा सोचते विचारते नहीं थे उनमें कम थी।
अरे वाह, ये तो कमाल है, मतलब हमारे कर्म और विचार सच में हमारे दिमाग पर निशान छोड़ते हैं।
एक तरह से ये उसी आंतरिक रिकॉर्डिंग का वैज्ञानिक सबूत जैसा लगता है। तो पौराणिक कथा, मनोविज्ञान और विज्ञान सब कहीं न कहीं एक ही बात कह रहे हैं।
तो फिर ये जो हमारा आंतरिक चित्रगुप्त है, हमारी अंतःचेतना, ये कर्मों को तौलती कैसे है? क्या बस ये देखती है कि हमने बाहर से क्या किया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ये जो अंदर का जज है ना,
हाँ,
हमारी अंतःचेतना, ये बाहरी दिखावे से जरा भी प्रभावित नहीं होता।
अच्छा,
तो फिर किस आधार पर फैसला होता है?
कर्ता की नीयत के आधार पर।
मतलब उसकी इच्छा क्या थी, उसकी भावना क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था?
ओ, नियत, इंटेंशन।
इसके उदाहरण भी दिए पूज्य गुरुदेव ने शायद।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं कि कोई गरीब आदमी है, उसने सच्ची भावना से मुश्किल से बचाकर दो पैसे दान दिए, और कोई अमीर आदमी है, उसने नाम के लिए, दिखावे के लिए 10,000 रुपए दे दिए।
हाँ,
तो वो आंतरिक चित्रगुप्त के लिए उस गरीब के दो पैसे का वजन ज्यादा होगा।
सही बात है।
मतलब भावना देखी जा रही है, रकम नहीं।
बिल्कुल। या जैसे महाभारत में अर्जुन का युद्ध, बाहर से देखें तो कितनी हिंसा है, मार काट है।
हाँ, भयंकर युद्ध था,
लेकिन उद्देश्य क्या था? धर्म की रक्षा, एक पवित्र उद्देश्य, इसलिए उसे पाप कर्म नहीं माना गया। यहाँ तक कि चोरी जैसा काम भी, अगर कोई भूख से बिल्कुल मजबूर होकर रोटी चुराता है और कोई दूसरा नशे के लिए या मजे के लिए चोरी करता है, दोनों की नियत अलग है।
हाँ बिल्कुल अलग है।
तो उनका मूल्यांकन भी अलग होगा। ये अंदर का चित्रगुप्त बड़ा निष्पक्ष है, वो बाहरी आडंबर नहीं देखता।
ये बात बहुत गहरी है। और एक और पहलू है शायद इसमें कि पाप पुण्य का हिसाब सबके लिए एक जैसा नहीं होता।
जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ये भी स्पष्ट करते हैं कि हिसाब किताब व्यक्ति के ज्ञान, उसके पद, उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से अलग अलग होता है।
अच्छा, कैसे?
ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई चपरासी रिश्वत लेता है, कोई क्लर्क लेता है और कोई मजिस्ट्रेट लेता है। काम तीनों ने गलत किया।
हाँ, अपराध तो एक ही है।
लेकिन सजा किसकी ज्यादा गंभीर होगी?
मजिस्ट्रेट की,
क्योंकि उसका पद ऊंचा है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, समाज को उससे ज्यादा ऊंची अपेक्षाएं हैं, उसका दोष ज्यादा बड़ा माना जाएगा।
सही है, मतलब जितना ऊंचा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी।
बिल्कुल। या जैसे कोई जंगल में रहने वाला भील है, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान में कोई हिंसा कर बैठता है।
हाँ।
उसका पाप उतना बड़ा नहीं माना जाएगा जितना उस ज्ञानी पंडित का माना जाएगा जो अहिंसा का उपदेश तो देता है लेकिन छिपकर गलत काम करता है।
क्योंकि पंडित को पता है कि सही क्या है गलत क्या है।
जी,
उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है।
जी, ज्ञान और पद सिर्फ अधिकार नहीं लाते, वो जिम्मेदारी भी लाते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे कर्मों की जवाबदेही भी बढ़ जाती है।
वाह, मतलब एक छोटी सी गलती भी ज्ञानी व्यक्ति के लिए बड़ी मानी जा सकती है।
हाँ, तो कुल मिलाकर सार ये है कि पूज्य गुरुदेव की नजर में चित्रगुप्त कोई बाहर बैठा हिसाब रखने वाला देवता मात्र नहीं है,
बल्कि
वो हमारी अपनी ही अंतःचेतना है, हमारा अपना अंदरूनी रिकॉर्डिंग सिस्टम, जो बिना किसी पक्षपात के हमारी नीयत को देखकर हमारे कर्मों को दर्ज करता रहता है।
और ये एक तरह से बहुत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बात है
जी, जिसे पौराणिक कथा के रूप में समझाया गया। और हमारे कर्मों का फल क्या मिलेगा, ये भी हमारी ज्ञान की अवस्था और हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से तय होता है।
ये पूरी चर्चा सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर रह जाता है
जी,
कि अगर ये सारा लेखा जोखा हमारे अंदर ही चल रहा है, हमारी अंता चेतना ही सब देख रही है, तो फिर उन कर्मों का क्या होता है जिन्हें हम दुनिया से छिपा लेते हैं? उनका वास्तविक परिणाम कैसे मिलता है? कर्मों का फल आखिर किस नियम से मिलता है?
ये बहुत गहरा प्रश्न है, शायद ये आगे विचार करने का विषय है।
हाँ, शायद अगली बार इस पर और बात हो सके।